जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आपकी अगली हेडिंग है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। घुरिये, घुरिये ने जाति व्यवस्था के उद्भव को प्रजातीय आधार से संबद्ध करते हुए इसे प्रमुख रूप से एक ब्राह्मणवादी नीति का परिणाम माना है। घुरिये का विचार है कि भारत में आने से पूर्व ही इंडो आर्यन प्रजाति के लोग रोमन संस्कृति के से प्रभावित थे। रोमन संस्कृति के अंतर्गत संभ्रांत व्यक्तियों के बीच वर्गभेद, कर्मकांडों की पवित्रता, संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा सभी अधिकारों पर एकाधिकार तथा निम्न वर्ग से दासों का सब व्यवहार वे विशेषताएं थी जिन्हें आर्यों ने ही ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार इंडो आर्यन प्रजाति के लोग जिनके वैदिक कालीन आर्य एक शाखा थे, आरंभ से ही सामाजिक जीवन पर अपना पूर्ण अधिकार रखने और कर्मकांड संबंधी पवित्रता को बनाए रखने में विश्वास करते थे। इस प्रकार इंडो आर्यन प्रजाति के लोग जिसकी वैदिक कालीन आर्य एक शाखा थे, आरंभ से ही सामाजिक जीवन पर अपना पूर्ण अधिकार रखने और कर्मकांड संबंधी पवित्रता को बनाए रखने में विश्वास करते थे। आर्यों ने जब द्रविड़ों को परास्त किया तब उन्होंने अपने उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं को द्विज और यहाँ के मूल निवासियों को दास अथवा शूद्र कहना आरम्भ कर दिया। बाद में अलौकिक अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा का प्रतिरूप कहना प्रारंभ किया और अंतर विवाह, कुलीन विवाह तथा कर्मकांडों की जटिलता के द्वारा द्रविड़ों से अपना मिश्रण रोकने के सभी संभव प्रयत्न किए। इस प्रकार घुरिये का कथन है कि ब्राह्मणों ने आंशिक रूप से वैदिक कर्मकांडों की पवित्रता को बनाए रखने की इच्छा, आंशिक रूप से कर्मकांड संबंधी अपने ही विचारों से उत्पन्न हानियों से छुटकारा पाने और आंशिक रूप से यहाँ के मूल निवासियों से अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे उनका शूद्रों से मिश्रण न हो सके। इसके पश्चात शूद्रों को निम्न स्तर और निम्न रक्त का प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने बहुत से भ्रामक प्रचार भी किए। विभिन्न जातियों के विवाह, सामाजिक संपर्क तथा खान पान संबंधी प्रतिबंध कैसे विकसित हुए इसे स्पष्ट करते हुए घुरिये का विचार है कि आरंभ में ये प्रतिबंध केवल आर्यों और शूद्रों के बीच ही थे। कालांतर में जब गुण अथवा व्यवसाय के आधार पर आर्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे तीन वर्णों में विभाजित हो गए तो इनके बीच भी वर्ग भेद की भावना स्पष्ट होने लगे। इसके बाद भी इन तीनों वर्णों के बीच अनुलोम विवाह के नियम के आधार पर विवाह संबंध स्थापित जरूर होते थे। इसका तात्पर्य है कि एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय अथवा वैश्य स्त्री से विवाह कर सकता था, लेकिन ब्राह्मण स्त्री का विवाह अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से नहीं हो सकता था। इसके पश्चात भी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य अपने से निम्न सामाजिक स्थिति वाली स्त्री से विवाह करते थे उन्हें अधिक पवित्र नहीं समझा जाता था। इस प्रकार पवित्रता की धारणा के आधार पर अधिक पवित्र जातियां अथवा समूह अपने से कम पवित्र जातियों से खान पान पर प्रतिबंध लगाने लगे। कालांतर में निम्न जातियों ने भी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उच्च जातियों के पुरुषों को अपने स्त्रियां देना बंद कर दिया। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जाति और उपजाति एक अंतर विवाहित समूह के रूप में बदल गई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास के संबंधित सभी प्रतिबंध इसी दशा का परिणाम है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जातिगत प्रतिबंध अधिक जटिल रहे हैं। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर घुरिये ने लिखा है कि भोजन और पानी से संबंधित नियंत्रण ब्राह्मणों की योजना के दूसरे चरण में आरंभ हुए थे। इस प्रकार उत्तर भारत में यह प्रतिबंध आरंभ से ही कार्यशील न होने के कारण अधिक जटिल नहीं हो सके, जबकि दक्षिण भारत में इनको आरंभ से ही प्रभावपूर्ण बना दिया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में आर्यों के संपर्क में आने से पहले ही भोजन को पवित्रता से संबंधित अनेक विश्वास प्रचलित थे। आर्यों के प्रभाव से ये विश्वास और अधिक व्यापक हो गए। इन सभी आधारों पर घुरिये ने यह निष्कर्ष दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पूर्णतया ब्राह्मणों की एक सुनियोजित योजना का परिणाम है। आपका निष्कर्ष है कि भारत की जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ और यहीं से इसे देश के अन्य भागों में ले जाया गया। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार है। घुरिये ने इस सिद्धांत के द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च क्यों है। इसके उपरांत भी जाति व्यवस्था की अनेक दूसरी विशेषताएं इस सिद्धांत के प्रामाणिकता में संदेह उत्पन्न करती हैं। पहला, सर्वप्रथम इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण जाति व्यवस्था के उद्भव को इंडो आर्यन संस्कृति के प्रसार के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। वास्तव में जाति व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जिसे केवल एक विशेष जात प्रजातीय समूह की प्रकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। दूसरा, यह सिद्धांत ब्राह्मण और शूद्र जातियों के उद्भव को तो स्पष्ट करता है, लेकिन इससे क्षत्रिय और वैश्य तथा अन्य हजारों जातियों की उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया को किसी ठोस आधार पर नहीं समझा जा सकता। तीसरा, यह सिद्धांत विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली व्यावसायिक भिन्नता को स्पष्ट करने में भी असफल रहा है। चौथा, यदि जाति प्रथा की उत्पत्ति केवल ब्राह्मणों की एक सुनियोजित योजना का ही परिणाम होती तब इसका हजारों वर्षों तक प्रभावपूर्ण बने रहना भी संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में विद्यमान है जहां ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं रहा। इससे भी इस सिद्धांत की अप्रमाणिकता सिद्ध होती है। इसके उपरांत भी अब्बे डुब्बाए जैसे प्रमुख विद्वान ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में ब्राह्मणों की चतुरता से भरी योजना को ही इसका सब सर्व प्रमुख कारक माना है। अगला सिद्धांत है व्यावसायिक सिद्धांत। नेसफील्ड, दहलमन और ब्लंट ने जाति व्यवसाय की उत्पत्ति को व्यावसायिक आधार पर स्पष्ट किया है। नेसफील्ड का कथन है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रजातीय भिन्नता का कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था के विकास होने के कम से कम 1000 वर्ष पहले ही प्रजातीय मिश्रण इतना अधिक हो चुका था कि प्रजाति के आधार पर इस तरह का कोई भी विभाजन करना असंभव था। इसके अतिरिक्त आपने घुरिए तथा अब्बे डुबाए के ब्राह्मणवादी विचारों को भी स्वीकार नहीं किया है। नेसफील्ड का कथन है कि भारत में जाति व्यवस्था के उत्पत्ति में पेशा और केवल पेशा ही एकमात्र उत्तरदायी कारक रहा है। आपका मत है कि आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को कर सकता था। पुरोहिती के काम पर भी ब्राह्मणों का एक अधिकार नहीं था। कालांतर में धार्मिक कर्मकांडों और यज्ञों से संबंधित कार्य इतने जटिल हो गए कि इन्हें पूरा करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता हुई। उस समय यज्ञ और धार्मिक कार्यों का सामाजिक जीवन में बहुत महत्व होने के कारण जो व्यक्ति भी इनको पूरा करने लगे समाज में उनकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च हो गई। ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाने लगा। धीरे धीरे पुरोहिती का यह कार्य अनुवांशिक हो गया। जब ब्राह्मणों ने पुरोहिती के व्यवसाय पर एक अधिकार कर लिया तब उससे कम महत्वपूर्ण कार्य अर्थात प्रशासन पर एक दूसरे वर्ग ने एक अधिकार कर लिया जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। इसके पश्चात जिस वर्ग ने व्यापार, पशुपालन और अन्य आर्थिक क्रियाओं पर एक अधिकार स्थापित किया वे वैश्य कहलाए। इस प्रकार जाति विभाजन का कारण आंशिक रूप से सुरक्षात्मक था और आंशिक रूप से अनुकरणात्मक। इस आधार पर नेसफील्ड ने यह निष्कर्ष दिया है कि जाति समाज की एक स्वाभाविक उपज है जिसके निर्माण में धर्म का कोई स्थान नहीं है। दहलमन ने नेसफील्ड के विचारों का समर्थन करते हुए व्यावसायिक आधार को कुछ भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। आपका विचार है कि मौलिक रूप से भारतीय समाज 3 समूहों में विभाजित था, क पुरोहित, ख शासक तथा ग पूंजी पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति। इनका व्यवसाय क्रमशः धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाओं से संबंधित था। ये सभी प्रमुख समूह नातेदारी और व्यवसाय के आधार पर बहुत से छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे। इनके फलस्वरूप पहले अनेक व्यवसायिक कारपोरेशन, व्यवसायिक संघ बाद में एक एक जाति के रूप में परिवर्तित होते गए और व्यवसायिक ज्ञान पिता से पुत्र को प्राप्त होने लगा। इस आधार पर दहलमन ने 2 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए। पहला, जाति व्यवस्था का विकास वर्गों से कारपोरेशन और कारपोरेशन से बड़े बड़े व्यवसायिक संघों के निर्माण के फलस्वरूप हुआ। दूसरा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति विभिन्न वर्णों से नहीं हुई बल्कि अनेक व्यवसायिक समूह 4 वर्णों में विभाजित थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण एक एक व्यवसायिक संघ था और इसके अंतर्गत प्रत्येक जाति एक एक व्यवसायिक समूह के रूप में थी। ब्लंट ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में व्यवसायिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे रिचले के प्रजातीय सिद्धांत से मिलाने का प्रयत्न किया है। आपके अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक वर्णगत समाज में व्यवसायिक विभाजन उत्पन्न होने की दशा से संबंधित है। इससे स्पष्ट करते हुए ब्लंट का विचार है कि भारतीय समाज आरंभ से ही बहुत से प्रजातीय समूहों में विभाजित रहा है जिसका आधार प्रजातीय विशुद्धता अथवा प्रजातीय मिश्रण की मात्रा थी। इसी समय यहाँ व्यवसाय के आधार पर अनेक संघों का निर्माण हुआ जिसमें सभी समूहों के व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होने लगी। ये संघ शक्तिशाली संगठनों के रूप में विकसित होने लगे और अपने व्यवसायिक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अंतर विवाह के नीति को अपना लिया। इन व्यवसायिक संघों का रूप इतना व्यापक था कि अनेक जनजातीय समूह भी इसमें सम्मिलित होने लगे। इसके पश्चात भी ये जनजातीय समूह केवल अपने समूह में ही विवाह संबंध स्थापित करने पर जोर देते थे। यही कारण है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रमुख जातियां और उपजातियां अपने आप में अंतर विवाही हैं। ब्लंट का विचार है कि अधिकार अधिकतर जनजातियाँ अपनी उत्पत्ति एक विशेष पूर्वज से मानते हैं। यही कारण है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि प्रमुख जातियों का कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता, जबकि अनेक उपजातियाँ आज भी अपनी उत्पत्ति किसी विशेष पूर्वज से होने का दावा करती हैं। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार की गई है। यद्यपि नेसफील्ड और ब्लंट ने जाति व्यवस्था में व्यवसाय की अनुवांशिक प्रकृति को देखते हुए अपने सिद्धांतों को व्यवसायिक विभाजन के आधार पर स्पष्ट किया है, लेकिन अनेक मौलिक दोषों के कारण इस सिद्धांत की अत्यधिक कटु आलोचना की जाती है। पहला, हट्टन का कथन है कि यद्यपि नेसफील्ड के अनुसार व्यवसाय ही जाति व्यवस्था का आधार होता है, तब क्या कारण है कि दक्षिण भारत में कृषि करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा उत्तर भारत में कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को अधिक ऊंचा स्थान मिला हुआ है। दूसरा, हट्टन के अनुसार यह भी विश्वास किया जा सकता है कि जाति व्यवस्था धर्म से पूर्णतया स्वतंत्र है। वास्तव में जाति से संबंधित अधिकांश प्रतिबंध धार्मिक हैं, व्यवसायिक नहीं। तीसरा, व्यवसायिक सिद्धांत के द्वारा शूद्र वर्ण अथवा निम्न जातियों की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता, फिर भी व्यवसाय के आधार पर बनी विभिन्न जातियों में ऊंच नीच का एक निश्चित संस्करण कैसे विकसित हो गया निर्धारण किया जा। यदि प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न व्यवसायों में ऊंच नीच के एक क्रम का निर्धारण किया जाए तो इन व्यवसायों को करने वाली जातियों की सामाजिक। चौथा, यदि प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न व्यवसायों में ऊंच नीच के एक क्रम का निर्धारण किया जाए तो भी इन व्यवसायों को करने वाले जातियों की सामाजिक स्थिति इससे मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, यदि व्यवसायिक विभाजन ही जाति व्यवस्था का आधार होता तो लोहे का व्यवसाय करने वाली जाति लोहार, सोने का काम करने वाली जाति सुनार से उच्च होती, क्योंकि प्राविधिक रूप से सोने की अपेक्षा लोहा अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भिन्न होने से स्पष्ट होता है कि व्यवसायिक आधार पर जातियों में ऊंच नीच का क्रम निर्धारित नहीं हुआ। पांचवा, इस सिद्धांत के द्वारा विभिन्न जातियों के बीच अंतर विवाह तथा व्यवसाय के अनुवांशिक स्वरूप के कारण को तो स्पष्ट किया गया है, लेकिन विभिन्न जातियों के बीच खान पान के प्रतिबंधों को स्पष्ट करने में यह सिद्धांत असफल रहा है। छठवां, हट्टन का कथन है कि दहलमन ने जर्मनी के व्यवसायिक संघों का उदाहरण देते हुए भारतीय जाति व्यवस्था के उद्भव में इनके महत्व को स्पष्ट किया है। यदि व्यवसायिक संघ ही भारतीय जाति व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होते तब जर्मनी में इस प्रकार की व्यवस्था का विकास क्यों नहीं हुआ। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित अगला सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक होकार्ट और सेनार्ट हैं। होकार्ट का विचार है कि संपूर्ण जाति व्यवस्था का उद्भव अनेक धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्मकांडों से संबंधित है। आपके अनुसार कर्मकांडों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं पवित्रता के आधार पर अनेक उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि प्रत्येक क्रिया के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे मंत्रोच्चार के लिए पुरोहित, निमंत्रण देने के लिए नाई, फूल लाने के लिए माली, सामान्य सेवा के लिए कहार आदि। इस प्रकार होकार्ट का मत है कि आरंभ में चारों वर्णों का विभाजन प्रमुख रूप से इन धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुआ। चारों वर्णों के जिन चार रंगों अर्थात सफेद, लाल, पीला और काला का उल्लेख मिलता है वह भी वास्तव में विभिन्न वर्णों द्वारा दी जाने वाली धार्मिक क्रियाओं की पवित्रता की ओर ही संकेत करता है। इस प्रकार होकार्ट ने यह निष्कर्ष दिया है कि धार्मिक क्रियाओं के आधार पर हिंदू समाज पहले अनेक समूहों में विभक्त हो गया और इसके बाद उनके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्य की पवित्रता के अनुसार उनकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण हुआ, जो अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने लगे। सेनार्ट ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित प्रतिबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कुल देवता की पूजा और परिवार में भोजन संबंधी निषेधों की विभिन्नता पर आधारित है। इसे स्पष्ट करते हुए आपका कथन है कि भारत में आर्यों के आक्रमण के पश्चात प्रजातीय मिश्रण बढ़ जाने के कारण विशुद्धता का स्तर दो भागों में विभाजित हो गया। एक और वे व्यक्ति थे जो अपनी वंश परंपरा के आधार पर विशुद्ध होने का दावा करते थे, और दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अपने परंपरागत व्यवसाय के आधार पर स्वयं को विशुद्ध कहते थे। इन दोनों ही परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक समूहों की रचना हो गई। एक ओर भिन्न भिन्न कुल देवताओं में विश्वास करने वाले समूह एक दूसरे से पृथक हो गए और दूसरी ओर व्यवसाय की भिन्नता के कारण इस पृथकता में और अधिक वृद्धि हुई। सेनार्ट का कथन है कि पुरोहिती का कार्य करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक संगठित थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी नैतिक शक्ति के दबाव में इन सभी समूहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार धार्मिक आधार पर ही समाज विभिन्न समूहों में विभाजित हुआ और धार्मिक पवित्रता के अनुसार ही विभिन्न समूहों को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में यह सिद्धांत बिल्कुल भी प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता। इस सिद्धांत के प्रमुख दोषों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, होकार्ट और सेनार्ट ने जाति व्यवस्था को केवल धार्मिक आधार पर ही स्पष्ट किया है, जबकि जाति व्यवस्था प्राथमिक रूप से धर्म और कर्म कांडों से संबंधित न होकर वास्तव में एक सामाजिक व्यवस्था है। दूसरा, प्रयुक्त सिद्धांत और विशेषकर होकार्ट के विचारों से जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सहवास, खान पान और अंतर विवाह संबंधी निषेधों का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता। तीसरा, इस सिद्धांत से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि केवल कुछ कर्मकांडों और पितृ पूजा के आधार पर ही जाति जैसी जटिल व्यवस्था का निर्माण कैसे हो गया। चौथा, सेनार्ट और होकार्ट के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन विद्वानों ने स्वयं जाति व्यवस्था का कोई अध्ययन नहीं किया, बल्कि जाति के कुछ नियंत्रणों को ही इसका सार तत्व मान लिया गया। यही कारण है कि ये विद्वान विभिन्न जातियों की उच्च और निम्न स्थिति का कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं बता सके। पांचवा, यह विश्वास करना भी कठिन है कि भारत में धार्मिक कर्मकांडों का इतिहास वर्ण व्यवस्था से अधिक पुराना है। अधिक संभावना तो इस बात की है कि जाति व्यवस्था के विभाजन होने के बाद ही कर्मकांडों को एक व्यापक और सुनिश्चित रूप मिल सका। छठा, हट्टन का कथन है कि यह सिद्धांत ब्रह्मपूर्ण होने के साथ ही जाति व्यवस्था के मौलिक प्रारूप से भी बहुत भिन्न है। यही कारण है कि जाति व्यवस्था के उत्पत्ति को समझने में यह असफल सिद्ध हुआ है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित अगला सिद्धांत है आदिम संस्कृति अथवा माना का सिद्धांत, हट्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हट्टन ने 1931 की जनगणना के समय जाति से संबंधित जो तथ्य एकत्रित किए उनके आधार पर आप उपयुक्त सिद्धांतों में से किसी भी व्याख्या को उपयुक्त नहीं मानते। आपका मत है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करते समय इसके तीन पक्षों को स्पष्ट करना आवश्यक है। क, जाति व्यवस्था में व्यवसाय का आंशिक रूप। ख, विवाह, खान पान तथा सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध। तथा ग, जातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था। हट्टन का कथन है कि भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कारणों को भारतीय परिस्थितियों में ही ढूंढा जा सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था भारत के अतिरिक्त संसार के किसी भी दूसरे भाग में विकसित नहीं हुई है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ऐसे आदिवासियों की संस्कृति का अध्ययन करें जिसमें बहुत लंबे समय से कोई परिवर्तन न हुआ हो। उदाहरण के लिए भारत में नागा जनजाति के क्षेत्र को लिया जा सकता है। यहाँ आज भी अनेक ऐसे आदिवासी हैं जो न तो हिंदू, बौद्ध अथवा इस्लाम धर्मों से प्रभावित हैं और न ही वे अपनी सभ्यता के अतिरिक्त अन्य किसी सभ्यता को जानते हैं। ऐसे जनजातियों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहाँ प्रत्येक गांव एक राजनीतिक इकाई है और उनके बीच व्यवसाय का विभाजन भी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव के सभी निवासी एक ही व्यवसाय के द्वारा जीविका उपार्जित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों के आने से पहले ही भारत में व्यवसायिक विभाजन का एक सामान्य स्वरूप अवश्य विद्यमान था। जातक ग्रंथ से भी इस स्थिति का प्रमाण मिलता है कि कुछ गांव में बर्तन बनाए जाते हैं, कहीं लोहे का काम होता है तो कहीं बुनाई अथवा लकड़ी का काम किया जाता है। आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासियों को परास्त किया तब उन्होंने इस व्यवसायिक विभाजन को अधिक स्पष्ट रूप दे दिया और अपने व्यवसाय को सर्वोच्च घोषित कर दिया। विभिन्न जातियों के बीच विवाह, सामाजिक संपर्क और खान पान से प्रतिबंध संबंधित प्रतिबंध क्यों पाए जाते हैं, इससे हट्टन ने नागा जनजाति में प्रचलित टेबू और माना जैसे विश्वासों के आधार पर स्पष्ट किया है। सभ्यता से दूर रहने वाली नागा जनजाति और कुछ दूसरी जनजातियों में अनेक व्यवहारों को करना अशुभ और अमंगलकारी समझा जाता है और इसलिए आदिवासी ऐसे व्यवहारों पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। आदिवासी विश्वासों के अनुसार माना एक ऐसी अशरीरी और अलौकिक शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान रहती है। स्पर्श के द्वारा यह एक दूसरे में आ जा सकती है, जिसका प्रभाव अच्छा हो सकता है और अनिष्टकारी भी। माना संबंधी विश्वासों के कारण यह आदिवासी समूह किसी भी बाहरी व्यक्ति अथवा अपरिचित समूह से दूरी बनाए रखते हैं। स्वयं अपने ही समूह में वे ऐसे व्यक्तियों का स्पर्श करने अथवा उसके खान पान पर प्रतिबंध लगाते हैं जिन्हें दुष्ट आत्माओं से प्रभावित समझा जाता है। हट्टन का विश्वास है कि भारत में आने से पहले ही आर्यों में सामाजिक आधार पर विभाजन की एक भावना विद्यमान थी। यहाँ के मूल निवासियों में टैबू और माना संबंधी भेदभाव को देखकर उन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट तथा निश्चित रूप दे दिया, जिससे आर्यों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव अस्थायी हो जाए। इसी के फलस्वरूप जाति व्यवस्था में विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित तरह तरह के प्रतिबंध जुड़ गए। विभिन्न जातियों की उच्च और निम्न स्थिति उपयुक्त दो दशाओं का ही संयुक्त परिणाम रही है। आर्यों ने अपने राजनीतिक प्रभाव से जब सामाजिक विभाजन को स्पष्ट रूप दे दिया, तब यह स्वाभाविक था कि सामाजिक व्यवस्था में उन्हें सर्वोच्च स्थान मिल जाता। इसके पश्चात यहाँ की मूल जनजातियाँ अपने आप ही उच्च और निम्न स्थिति वाले अनेक सामाजिक समूहों में विभाजित हो गई। हट्टन के अनुसार जाति व्यवस्था की उपयुक्त उत्पत्ति में उपयुक्त दशाएं प्रधान कारण हैं, जबकि सहयोगी कारक के रूप में कुछ अन्य दशाएं भी महत्वपूर्ण रही हैं। इनमें विभिन्न समूहों की भौगोलिक पृथकता, खान पान संबंधी निषेध, कर्मकांड संबंधी पवित्रता, पूर्वजों की पूजा, कर्म की धारणा, जादुई विश्वास, व्यवसायिक संघ, परस्पर विरोधी सांस्कृतिक विशेषताएं, प्रजातीय संघर्ष, वर्गीय संरचना और धार्मिक दर्शन आदि कुछ महत्वपूर्ण कारक है। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार की जा सकती है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में हट्टन ने निश्चय ही एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा यह अधिक प्रामाणिक तथ्यों पर भी आधारित है, लेकिन फिर भी इसे पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके कारण निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। पहला, वास्तव में टैबू और माना जैसे विश्वास संसार की लगभग सभी जातियों में पाए जाते हैं। फिर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति केवल भारत में ही क्यों हुई? इस आधार पर अनेक विद्वानों का कथन है कि हट्टन ने माना शब्द का प्रयोग बहुत मनमाने रूप से किया है। दूसरा, केवल आदिवासी संस्कृति अथवा किसी विशेष क्षेत्र की विशेषताएं ही संपूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि हट्टन ने भी अपनी सुविधा के लिए नागा संस्कृति का मनमाना उपयोग किया है। तीसरा, यह निष्कर्ष दे देना कि भारत में आर्यों के आने से पूर्व ही टैबू और माना के आधार पर कुछ प्रतिबंध और सामाजिक विभाजन के नियम प्रचलित थे, पूर्णतया एक भ्रांति है। वास्तव में यदि आर्यों का कहीं बाहर से आकर यहाँ बसना सच भी हो, तो भी हमारे पास उस समय के कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। चौथा, हट्टन की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह, खान पान तथा सामाजिक संपर्क के प्रतिबंधों का विस्तार निम्न जातियों से उच्च जातियों की ओर हुआ है। वास्तव में यह विचार भ्रमपूर्ण है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित अगला सिद्धांत के अंतर्गत अन्य सिद्धांतों को लिया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। उपर्युक्त प्रमुख सिद्धांतों के अतिरिक्त अनेक अन्य विद्वानों ने भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। इन विचारों को संक्षेप में अग्र प्रकार समझा जा सकता है। क, शरत चंद्र राय के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति आर्य और द्रविड़ संस्कृति के संपर्क का परिणाम है। अपने आर्य, पूर्व द्रविड़ और द्रविड़ प्रजातीय समूहों की भिन्न भिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। आर्य अथवा इंडो आर्यन प्रजाति की संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और कर्म की धारणा का एक विशेष महत्व था, जबकि पूर्व द्रविड़ प्रजाति के व्यक्ति आत्मा संबंधी विश्वासों तथा आत्म केंद्रित सामाजिक व्यवस्था को अधिक महत्व देते थे। इससे कुछ भी भिन्न द्रविड़ लोग व्यावसायिक विभाजन, जादुई विश्वासों तथा कर्मकांडों की जटिलता में विश्वास करते थे। भारत में आर्यों के आने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को उनकी संस्कृति अपने से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं हुई, और इसी के बाद यहाँ के मूल निवासियों को उनकी संस्कृति अपने से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं हुई, और इसी कारण उन्होंने आर्यों के राजनीतिक प्रभाव में सरलता से वर्ण विभाजन को स्वीकार करके इसके प्रतिबंधों को अस्थायी बनाने में योगदान दिया। अपनी राजनीतिक प्रभुता के कारण इस व्यवस्था में आर्यों अथवा द्विजों को उच्च स्थान मिल जाना स्वाभाविक ही था। शरत चंद्र राय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि यह सिद्धांत हिंदू जीवन के दार्शनिक पक्ष पर अधिकतम बल देता है, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। वास्तव में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नैतिक सिद्धांतों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ख है इबेटसन। इबेटसन ने व्यवसायिक विभाजन के आधार पर एक उद्विकसीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आपका विश्वास है कि जाति व्यवस्था का उद्भव विकास के अनेक स्तरों पर हुआ। आरंभ में एक समूह के अंदर रक्त संबंधों की प्रधानता होने के कारण इसके सदस्यों में ऊंच नीच जैसी कोई भी भावना नहीं थी। इसके पश्चात राजा का प्रमुख कर्तव्य एक ऐसी नीति का निर्धारण करना हो गया जो व्यवसायिक भिन्नता और श्रम विभाजन की उचित व्यवस्था करती हो। इसके फलस्वरूप एक व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए सुदृढ़ संघों का निर्माण करने लगे। एक संघ दूसरे संघ के सदस्यों से पृथक रहने का प्रयत्न करता था, जिससे उनका व्यवसायिक ज्ञान उससे भिन्न समूहों के सदस्यों को न मिल पाए। इसी के फलस्वरूप खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक प्रतिबंध विकसित हो गए। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पुरोहिती का कार्य करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक संगठित रहे और उन्होंने अपने व्यवसायिक संघ के नियमों का दृढ़ता से पालन किया। इस प्रकार इस समूह की स्थिति सर्वश्रेष्ठ हो गई। कालांतर में जब कभी व्यवसायिक संघ अंतरविवाही संघों के रूप में परिवर्तित हो गए, तब एक संस्करण के रूप में स्थापित इसी विभाजन को जाति व्यवस्था कहा जाने लगा। हट्टर और मजूमदार ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा है कि व्यवसाय के आधार पर वर्गों का निर्माण संसार के सभी भागों में हुआ है, लेकिन जाति व्यवस्था के तत्व भारत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलते। यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष। अगली हेडिंग है निष्कर्ष, एक उचित दृष्टिकोण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित उपयुक्त सभी सिद्धांतों और उनकी आलोचनाओं से एक ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किसी एक सिद्धांत के आधार पर ही जाति की उत्पत्ति को पूर्णतया स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। इस संबंध में हमें यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त सिद्धांत केवल इसलिए ही दोषपूर्ण नहीं है कि उन्होंने किसी विशेष कारक को ही जाति व्यवस्था के उत्पत्ति का एक प्रमुख आधार मान लिया है, बल्कि इसलिए भी दोषपूर्ण है कि अधिकांश पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति को अपनाया है। वास्तव में जाति व्यवस्था एक अत्यधिक जटिल और व्यापक व्यवस्था है। स्मृति काल से लेकर आज तक इसकी संरचना और कार्यों में इतने परिवर्तन और संशोधन होते रहे हैं कि किसी एक समय की परिस्थिति के आधार पर ही इसकी उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक उचित दृष्टिकोण यह है कि हम विभिन्न कालों में उत्पन्न होने वाले अनेक परिस्थितियों के विकासवादी क्रम के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करें। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित वास्तविक कारकों को समझने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इस व्यवस्था से संबंधित वास्तविक समस्याओं को समझ लिया जाए। संक्षेप में ये समस्याएं 5 कही जा सकती हैं। पहला, भारत में सामाजिक विभाजन का प्रारंभिक रूप क्या था? दूसरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों का निर्माण किस आधार पर हुआ? तीसरा, एक ही वर्ण के अंतर्गत हजारों जातियों का निर्माण किस प्रकार हुआ? चौथा, जाति व्यवस्था से संबंध अनेक प्रतिबंधों अथवा निषेधों का कारण क्या था? पांचवा, यह व्यवस्था पक्षपातपूर्ण होते हुए भी इतने लंबे समय तक कैसे स्थायी बनी रही? प्रस्तुत विवेचन में हमारा उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का समाधान करते हुए उद विकासीय क्रम में जाति व्यवस्था के उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रमुख कारक आर्यों और अनार्यों के बीच होने वाले संघर्ष था। आर्य चाहे भारत में बाहर से आकर बसे हों अथवा यहीं के मूल निवासी रहे हों, इतना अवश्य है कि उन्होंने द्रविड़ों पर विजय प्राप्त करके उन पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप आर्य और दास का भेद समाज में व्याप्त हो गया। यह सामाजिक विभाजन की पहली स्थिति थी। दूसरे चरण में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वयं आर्यों में भी समय समय पर अनेक संघर्ष होते रहे। इस संघर्ष में जो व्यक्ति विजयी हुए उन्होंने धार्मिक कार्यों और बौद्धिक क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस वर्ग को ही ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मणों पर शारीरिक शक्ति का अभाव था। इस प्रकार जिन ब्राह्मणों ने युद्ध कुशलता और साहस के द्वारा प्रशासन पर अधिकार कर लिया, उन्हें ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवस्था में दूसरा स्थान दे दिया, जिससे वे ब्राह्मणों का विरोध न करके उनके हितों को सुरक्षित रखे। यह दूसरा वर्ण क्षत्रिय कहलाए। इन दोनों समूहों के पश्चात आर्यों में जो व्यक्ति शेष रह गए उन्होंने आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया और इस प्रकार आर्यों में इनकी स्थिति निम्नतम रहे। यही वर्ग वैश्य कहलाया। इन सभी वर्गों ने एकमत होकर द्रविड़ों को सामाजिक व्यवस्था में निम्नतम स्थान दिया, क्योंकि ऐसा करना इन तीनों उच्च वर्णों के सामान्य हित में था। इस प्रकार संपूर्ण समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित हो गया। इस संपूर्ण विभाजन की अवधि में ब्राह्मणों ने अपने व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक विश्वासों और पवित्रता की धारणाओं को इतना व्यापक रूप दे दिया कि इन्हीं के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होने लगा। हट्टन का कथन है कि धर्मशास्त्रों को ब्राह्मणों ने इतना जटिल बना दिया कि जनसाधारण उनकी इस चतुराई को पकड़ सकने में असमर्थ रहे। समाज के इस अभिजात वर्ग का शिक्षा और ज्ञान पर अधिकार होने के कारण यह व्यवस्था धार्मिक आधार पर स्वीकार कर ली गई। विकास के तीसरे चरण में जो भी व्यक्ति अपने से भिन्न प्रजातीय समूह, सांस्कृतिक समूह अथवा निम्न स्थिति के समूह में सामाजिक संबंध स्थापित करता था, उसे वर्ण संकर कहकर तथा अपवित्र समझकर उसके समूह के व्यक्ति उसका बहिष्कार कर देते थे। एक लंबी अवधि में इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों के वंशजों से बड़े बड़े समूहों का निर्माण हुआ। ऐसे प्रत्येक समूह को अपने वर्ण से संबंधित रहने के बाद भी एक एक पृथक जाति के रूप में देखा जाने लगा। जातियों के निर्माण से पहले प्रमुख तीनों तीन वर्णों के बीच भोजन विवाह और सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अधिक प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन जब रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के आधार पर वर्ण संकर जातियों अथवा उपजातियों का निर्माण आरंभ हुआ, तब चतुर्थ चरण में प्रत्येक समूह ने अपनी विशुद्धता बनाए रखने और दूसरे समूहों के सामने अपने को पवित्र दिखाने के लिए अपवित्र समझे जाने वाले समूहों की पृथकता की नीति को अपनाना आरंभ कर दिया। यह पृथकता ब्राह्मणों की ओर से आरंभ हुई और बाद में अन्य सभी जातीय समूहों ने इसे ग्रहण कर लिया। विवाह, खान पान और सामाजिक संपर्क से संबंधित सभी प्रतिबंध इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इन प्रतिबंधों और इनसे संबंधित कर्मकांडों में गुणोत्तर रूप से इतनी वृद्धि होती गई कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस पर जाति व्यवस्था कुछ प्रतिबंध न लगाती हो, इन प्रतिबंधों को सदैव स्वीकार किया जाता रहा हो। ऐसी बात नहीं है कि इनके विरुद्ध समय समय पर व्यापक आंदोलन और धार्मिक क्रांतियां तक हुई हैं, लेकिन इनके बाद भी आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व का समय वह था जब सामाजिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों का एक अधिकार हो गया। इस समय अनेक पौराणिक गाथाओं, उपाख्यानों, धर्मशास्त्रों और कर्मकांडों के द्वारा जाति व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति को अलौकिक विश्वासों से इस प्रकार जोड़ दिया गया कि इसमें किसी प्रकार की भी अविश्वास करना अधर्म माना जाने लगा। इसके पश्चात भी जाति व्यवस्था इतना अस्थायी रूप नहीं ले पाती यदि 10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत पर मुसलमानों का शासन आरंभ न हो जाता। भारत की स्थिति में धर्म की सामाजिक जीवन पर एकमात्र आधार बन गया और इस प्रकार जाति व्यवस्था के धार्मिक पक्ष ने इस व्यवस्था को अस्थायी रूप दे दिया। इस आधार पर सैली गनमैन का कथन है कि जाति व्यवस्था की स्थिरता का एकमात्र कारण ब्राह्मणों के मस्तिष्क के में अपने हितों को पूरा करने के लिए श्रेणी विभाजन की वह नीति थी जिसका स्पष्ट रूप उस संपूर्ण साहित्य, जीवन दर्शन तथा धार्मिक आदर्शों में देखने को मिलता है जिनका निर्माण स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा ही हुआ था। उपयुक्त संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक विकासवादी क्रम के माध्यम से हुई जिसे एक विकसित जाति व्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में बहुत लंबा समय लगा होगा। इस प्रकार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को किसी एक प्रकार के आधार पर स्पष्ट न करके इसे अनेक प्रजातीय, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर स्पष्ट करना ही उचित होगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का वास्तव में यही एक उचित दृष्टिकोण था। इस प्रकार जाति व्यवस्था के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।